मंत्र चार। अणे जदेकं मनसो जवीयो नैनद देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत तद्दावतो अन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिष्वा दधाति। अन्वय। अनेजत एकं मनसः जवीयः पूर्वम् अशर्त देवाः एनत न आप्नुवन् तत्तिष्ठत धावतः अन्यान्य अत्येति तस्मिन् कोष्ठक में सति मातरिष्वा अपह दधति। पद अर्थ। अनेजत विचलित न होने वाला अचल एकम एकमात्र अकेला मनसः मनसे जवीयः अर्थात वेगवान या तीव्रगामी पूर्वम अर्थात पहले अर्षत अर्थात पहुंचा हुआ या गया हुआ देवाह अर्थात इंद्रियां एनत अर्थात इसको न आपनुवन नहीं पा सकती नहीं प्राप्त कर सकती। तत अर्थात वह आत्मा तिष्ठत स्थिर होते हुए धावतः दौड़ते हुए अन्यान दूसरों को अत्येति पार कर जाता है लांघ जाता है अतिक्रमण कर जाता है। तस्मिन् सति उस आत्मा के रहते हुए ही मातरिष्वा आकाश में गमन करने वाली वायु अपह प्राणियों के कार्यों को अथवा अग्नि आदित्य पर्जन्य के द्वारा क्रमशः ज्वलन प्रकाश और वर्षण रूप कार्यों को दधाती या धारण करता है अथवा विभाजन करता है। भावार्थ। आत्मा अपने स्वरूप से विचलित न होने वाला एकमात्र मन से भी अत्यधिक गति वाला और पहले से ही सब जगह पहुंचा हुआ अतवे एव स्थूल इंद्रियां इसे न प्राप्त कर सकी वह आत्मा स्थिर रहते हुए भी गतिशील अथवा दौड़ते हुए दूसरों को लांघ जाता है अर्थात अतिक्रमण कर जाता है। शरीर में आत्मा के रहते हुए ही वायु सभी प्राणियों के कर्मों का आधान करता है अथवा विभाजन करता है। टिप्पणी। पूर्व मंत्र में जिस आत्मा के हनन से अज्ञानी के अत्यंत अधोगति प्राप्त करने का उल्लेख किया गया है वह आत्मा क्या है और कैसा है इस शंका का समाधान करते हुए इस मंत्र में आत्मा के संबंध में प्रारंभिक परिचय दिया गया है। वह आत्मा कभी भी अपने स्वरूप को परिवर्तित नहीं करता शाश्वत रूप से एक ही जैसा है। मन अत्यंत तीव्रगामी कहा गया है किंतु यह आत्मा मन से भी अत्यधिक वेगवान है चूंकि यह सर्वत्र व्याप्त है ऐसा हम इस उपनिषद के प्रथम मंत्र के आधार पर जानते हैं। अतएव मन अत्यंत तीव्र गति से जहाँ भी पहुँचता है वहाँ सर्वव्यापक होने के कारण आत्मा पहले ही पहुँचे हुए के समान उपस्थित रहता है। अतः मन आदि इंद्रियाँ उसका पीछा करके भी इसे नहीं पा सकती और यह सबसे आगे पहुँचता हुआ ज्ञात होता है और स्थिर रहता है फिर भी अधिक दौड़ने वाले मन आदि को लांघ कर आगे बढ़ता रहता है। प्राणी मात्र में जब तक आत्मा की स्थिति रहती है तभी तक वायु तत्तद प्राणियों के कर्मों का यथा योग्य आधान या विभाजन अथवा निर्धारण करता है। कहने का आशय यह है कि कर्मों का निर्धारण करने वाला तो वायु ही है और जैसा प्राणी रहता है उसके अनुरूप ही वह कर्मों का आधान करता है किंतु यह आत्मा की उपस्थिति में ही हो सकता है। जैसे रथ को खींचने वाले तो घोड़े होते हैं परंतु उनके संचालन के लिए सारथी की उपस्थिति अनिवार्य होती है उसी प्रकार आत्मा की उपस्थिति वायु के द्वारा कर्म निर्धारण हेतु आवश्यक होता है। वायु पांच प्रकार की होती हैं प्राण उदान व्यान समान और अपान। देवों के दो मुख्य रूप हैं देहस्त देव अर्थात आँख कान नाक रसना त्वचा आदि जगतस्त देव अर्थात अग्नि वायु सूर्य चंद्र वरुण आदि। मातरिश्वा के दो अर्थ हैं पहला माता के गर्भ में रहने वाला जीव दूसरा प्राण तत्व। माता के गर्भ में आया हुआ जीव उस आत्मा या ब्रह्म के आधार से देह धारण करता है। कर्म संस्कार रूप से मनुष्य के चित्त में बैठे रहते हैं, वे नूतन कर्म के सृजन में कारण बनते हैं। इस प्रकार कर्मफल जीवन को भोगना ही पड़ता है। अश्वमेध भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, गीता में भी आत्मा ब्रह्म की व्यापक सिद्ध सत्ता का विवेचन है। न मे विदुह सुरगणाः प्रभवम् न महर्षयः अहमादिहिम देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः। गीता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मेरी उत्पत्ति को अर्थात विभूति सहित लीला के प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। कहने का भाव यह है कि परब्रह्म परमात्मा स्थिर रहता हुआ भी वायु मन आदि का अतिक्रमण कर सकता है, और वायु आदि देवों में जो जरावर्षण प्रकाशमान प्राणी प्राण धारणा की शक्ति है, यह भी उस अचिंत्य परमेश्वर की शक्ति का एक अंश मात्र ही है। उनका सहयोग मिले बिना ये कुछ भी नहीं कर सकते।